समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सरफिरोजी एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स कैप्सूल्स बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज़ हेडलाइंस फर्स्ट। Enforcement Directorate questions Robert Vadra in money laundering case linked to land deal in Haryana.
भारत का हज कोटा 2014 से 2025 तक लगभग 40,000 बढ़ा।
Wholesale price index inflation eases to 2.05% in March.
अमेरिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर अस्थायी टैरिफ राहत के बाद शेयर बाजारों में 2% से अधिक का उछाल।
US government freezes $2.3 billion funds to Harvard University after it rejects Trump's demand to dismantle diversity, equity and inclusion programs.
और ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 का दूसरा चरण आज से पेरू के लीमा में शुरू।
And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Art Day. So we start off with a famous line by Pablo Picasso, who said, "The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls." Well, very great words there by Pablo Picasso. And also Thomas Merton very famously said, "Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time." So each year, Sarfirozi, on 15th April, World Art Day is celebrated. And this day coincides with the birthday of the legendary artist Leonardo da Vinci.
और अभिषेक, बात कला की करें तो कला केवल मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस हमें रचनात्मकता को सराहने और उसे प्रोत्साहित करने का संदेश देता है।
Yes, and the special occasion is marked annually to acknowledge the contributions of artists, emphasizing the importance of art in our lives, and the day is dedicated to promoting the development of art and the freedom to create. This year's theme is a garden of expression, cultivating community through art.
बिल्कुल अभिषेक, विश्व कला दिवस कला के विकास और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है और 2019 में यूनेस्को के महासम्मेलन के 40वें सत्र के दौरान इस दिवस की घोषणा की गई थी।
Yes, and art nurtures creativity, innovation and cultural diversity for all peoples across the globe and plays an important role in sharing knowledge and encouraging curiosity and dialogue. And these are qualities that art has always had and would always have if we continue to support environments where artists and artistic freedom are promoted and protected.
बिल्कुल अभिषेक, कला सांस्कृतिक जुड़ाव का एक माध्यम है और कई बार जो चीजें हम बोलकर नहीं बयान कर सकते वो एक चित्र से, संगीत से या नृत्य जैसी कलाओं के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं। लेकिन अभिषेक, अगर हमें कला को शब्दों में बयान करना हो तो हम उसे परिभाषित कैसे करेंगे?
Absolutely, art is a visual object or experience consciously created through an expression of skill or imagination. And the term art encompasses diverse media such as painting, sculpture, printmaking, drawing, decorative arts, photography and installation. And art can be used as a way of connecting with ourselves and with each other, and its power lies in its ability to inspire, create joy and provoke thought. Art is more than just a form of expression. It's a way of understanding the world and a place in it. So, Sarfirozi, I hope that answers your question.
जी बिल्कुल, और अभिषेक ये कहना गलत नहीं है कि कला हमें अपने जीवन का अर्थ देती है और कला को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हम बस इससे जुड़ सकते हैं, इससे अपनी कल्पनाओं को आकार दे सकते हैं, लेकिन इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। ये ऐसी भावनाओं और संवेदनाओं को जन्म देती है जिनका दमन मुमकिन नहीं है।
Yes, sir, and the value of art lies in its ability to evoke emotion. Whether you are looking at a painting, watching a movie, or listening to music, art allows us to experience a range of emotions from joy to sorrow and everything in between. And art lovers will be glad to know that studies have found that art can reduce stress, increase self-esteem, and improve our ability to cope with difficult emotions. Art provides a safe place for us to express our thoughts and feelings, allowing us to connect with ourselves on a deeper level. And have you been postponing recreational art-related activities? Well, don't do it anymore, because art can also help to decrease symptoms of depression and anxiety. Studies have found that engaging in creative activities such as painting, drawing or sculpting can reduce symptoms of both depression and anxiety.
बिल्कुल अभिषेक, और अक्सर कई विशेषज्ञ ऐसे लोगों को आर्ट क्रिएशन से जुड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि आर्ट मेकिंग आपके मन को शांत करती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया देती है। आर्ट क्रिएशन के दौरान लोगों का ध्यान तनाव से हटकर क्रिएटिविटी पर केंद्रित हो जाता है।
Absolutely, and Leonardo da Vinci was born on April 15th, 1452 in Anciano near Vinci, Republic of Florence, Italy, was an Italian painter, draftsman, sculptor, architect and engineer whose skill and intelligence perhaps more than any of other figure epitomized the renaissance of humanist ideal.
लियोनार्डो द विंची की लास्ट सपर और मोनालिसा सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली पेंटिंग्स में से हैं।
And listeners, did you know that in his last words Leonardo da Vinci said, I have offended God and mankind because my work did not reach the quality it should have.
और अभिषेक, जब बात कला की करें तो हम सभी जानते हैं कि भारत सदियों से इसमें आगे रहा है। भारत में चित्रकला की कला प्राचीन काल से चली आ रही है और हम सब अजंता और एलोरा की गुफाओं में के माध्यम से ये सब देख भी चुके हैं।
Yes, absolutely, and I'm sure our listeners must have heard about राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ऑफ केरला वाज परहैप्स द फर्स्ट ग्रेट मॉडर्न पेंटर इन इंडिया। He evolved a national style of painting by combining various regional elements like costumes, jewelry, and facial features. His paintings, which mostly depicted mythological themes, became very popular not only in India but abroad.
उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। हिंदू देवी देवताओं का बहुत ही प्रभावशाली इस्तेमाल उनके चित्रों में दिखता है। इन्होंने अपनी तस्वीर नायर लेडी एडोरिंग हर हेयर के लिए विश्व कला प्रदर्शनी वियना में स्वर्ण पदक जीता। लेडी इन द मून लाइट इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है।
Yes, and is considered to be the originator of the school of modern painting. The school was called modern because of the heavy influence of Western techniques and themes. And Sir Firozi, you must have also heard of M.F. Hussain.
Hmm.
And he's considered as India's leading artist. He paints in black social environment, often using distorted human figures, horses and objects. So, in the words of Ralph Waldo Emerson, in art, the hand can never execute anything higher than the heart can imagine. So to conclude our discussion, so by now it must have become evident that when we give ourselves the opportunities to connect with art, we're able to take a step back, reflect what's going on in the world, evaluate our lives and reflect. And moving on to a second topic in the Dateline section, Prime Minister Narendra Modi has extended his greetings to the citizens of Himachal Pradesh on the occasion of Himachal Divas. In a social media post, Mr. Modi wrote that the state is renowned for its glorious culture and its people are known for their hard work, talent and valour. He also wished for the happiness, prosperity and health in the lives of all his citizens on this special occasion.
जी अभिषेक, और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ये 1948 में हिमाचल प्रदेश के एक राज्य के रूप में स्थापना की याद दिलाता है। इस गठन में चंबा, मंडी, सिरमौर और महलोक सहित 30 रियासतों का भारतीय संघ में विलय शामिल था। और श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि हिमाचल नाम संस्कृत के शब्दों हिमा यानी बर्फ और अंचल यानी गोद से आया है, जिसका अर्थ है बर्फ की गोद में। हिमाचल प्रदेश आज अपना 78वां हिमाचल दिवस समारोह मना रहा है। वर्ष, जैसा कि हमने बताया कि 1948 में आज ही के दिन 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था।
हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह चंबा जिला के जनजातीय पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। हिमाचल के इतिहास में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन चंबा जिला की दुर्गम लेकिन मनोरम पांगी घाटी के किलाड़ क्षेत्र में किया गया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ वाईएस परमार को याद किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से हिमाचल ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और ये प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिला मुख्यालयों पर भी हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर हिमाचल का 70 वर्षों का इतिहास गौरवमयी रहा है और यहां के लोग आज भी अपनी प्राचीन परंपरा को संजोए रखे हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं प्रभा शर्मा।
Yes, and from snow-capped peaks to vibrant valleys, Himachal is not just a place, it's an emotion. So, happy Himachal Day.
बिल्कुल अभिषेक, उम्मीद है कि पर्यटकों की पहली पसंद में से एक हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश शांति और खूबसूरती की मिसाल बना रहे। सभी को हिमाचल दिवस पर शुभकामनाएं।
Yes, and the Prime Minister Narendra Modi also extended his greetings on the occasion of Bengali New Year, Poila Boishak. And in a social media post, the Prime Minister expressed hope that everyone's wishes would be fulfilled in the coming year. He also prayed for success, good health, prosperity and happiness for all.
और अपने श्रोताओं को बता दें कि पोहला बैशाख दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पोहला, जिसका अर्थ है पहला, और बैशाख शब्द जो बंगाली कैलेंडर के पहले महीने को दिखाता है। ये कृषि के समय के आगमन को दिखाता है, जब किसान खेतों की जुताई और बीज बोना शुरू करते हैं।
Yes, and Shubho Navabarsho or Bengali New Year, also known as Poila Boishak, is a much anticipated festival celebrated by Bengalis in the Indian states of West Bengal, Assam, Tripura and Bangladesh.
श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है।
इन द हार्ट ऑफ गोवा एन एंशियंट एंड मिस्टीरियस ट्रेडिशन अनफोल्ड्स ईच स्प्रिंग। इट इज कॉल्ड चोरोत्सव, अ फेस्टिवल लाइक नो अदर फिल्ड विद ड्रामा, हिस्ट्री एंड डीप रूटेड रिपेंटेंस। लेट्स गो टू द विलेज ऑफ जरमे इन मॉक्सी, वेयर दिस एज ओल्ड रिचुअल इज एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑ एंड वंडर। वी हैव अ रिपोर्ट फ्रॉम अ कॉरेस्पॉन्डेंट।
As the full moon rises over the western ghats, the quiet village of Zarme transforms into a stage of solemn remembrance and dramatic reenactment. Chorotsav, a festival observed during Shigmo, the Goan equivalent of Holi, is a unique tradition that draws villagers back to their ancestral roots. Legend has it that many years ago, a tragic misunderstanding led to the death of some young men who were mistaken for robbers or chores. Overcome with grief and fear of divine retribution, the villagers devised a ritual of atonement, one that continues to this day. In the heart of the village, in front of the sacred Saptamartika temple, the ritual begins. 8 young men, the chosen chores, undergo an intense and somewhat eerie transformation. In a highly coordinated act, 4 of them are buried in the ground with only their heads visible, while the other 4 are inverted. Heads buried, swords in hand, their bodies dramatically exposed above the surface. The air is thick with anticipation as the drum beats fall silent and the chores are revealed, sending ripples of excitement through the gathered crowd. Meanwhile, in Karanzol, another village known for this ritual, the spectacle is even more elaborate. Here, 7 chores are buried, while one is raised on a spear and another lies on a platform adorned with a garland of leaves. This hauntingly theatrical event unfolds under the watchful eyes of an eager audience at the Kuladevata temple, beginning with an invocation near a sacred banyan tree. Despite the element of danger, the festival is deeply revered. It is more than just a dramatic performance. It is a symbol of repentance, a tribute to the past, and a testament to the villagers' resilience. Regular attendees insist that Chorotsav is an experience that must be seen to be believed, an unforgettable moment in the rhyme of Goa's cultural landscape.
A tale of history, mystique, and repentance, Chorotsav continues to intrigue and attract visitors to the village of Maushi, which is also home to ancient rock art. With inputs from Mahesh Chopra, this is Prashila Gadekar.
And moving on, the visually impaired young girl Ruhi Jaan, born in South Kashmir's Yaripora Kulgam district, has been excelling in her studies while facing numerous unimaginable difficulties, and now she has achieved feat in her career while securing appointment in Kashmir's highest seat of learning, that is Kashmir University, after clearing all requisite phases of selection process. We have a report from a correspondent in Srinagar.
Ruhi Jan, in her late 20s, despite her natural disability, has traversed a difficult path to reach Jawaharlal Nehru University, Delhi, and completed her PhD degree besides other examinations for eligibility to secure career as a teacher in higher education. She has mastered Braille medium to pursue education and covering the first phase of her career. Recently, she has been appointed assistant professor in Department of Education at University of Kashmir. Talking to Parikrama, Ruhi Jan shared her joy and happiness.
मेरा जो ये सफर है हमारे विलेज के एक छोटे से स्कूल से लेके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक पहुंचा ये सफर, मैं ये कहना चाहूंगी उन पर्सन्स को जो यही सेम चीज फेस कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, उनके लिए मेरी ये मैसेज है कि वो अपनी जो वीकनेस है इसको स्ट्रेंथ बनाए और अपने लिए वही रास्ता इख्तियार करे जिस रास्ते वो खुद चल सके विदाउट सपोर्ट. और उनके पेरेंट्स तक मेरी यही मैसेज रहेगी कि वो उनको फ्रीडम दे, वो जो चाहते हैं अपने लाइफ में करना उनको सामने लेके आए ताकि वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाए.
इन हर मैसेज रूही जान एम्फसाइज़ेस दैट ऑल those having different types of disabilities should not get discouraged by adverse conditions. She said they should remain steadfast in pursuing their dreams in any field of life with hard work, dedication and honesty. Tariq Rathar for Parikrama, Akashwani, Srinagar.
Mizoram today joined the world community in celebrating World Art Day 2025. The auspicious occasion held at DIPR's Lian Chiari Run at the Treasury Square in Aizawl witnessed the esteemed presence of Chief Minister Lalduhoma along with a galaxy of artists both from Mizoram and outside. And the observance was held under the aegis of the International Association of Art, IAAA India, and the Government of Mizoram. And talking about the seminar's theme, Rich Folk Culture of the Resilient Mizos, Chief Minister Lalduhoma said that it encapsulates the essence of Mizo heritage and identity.
Our seminar theme, Rich Folk Culture of Resilient Mizo, encapsulates the essence of our heritage and identity. It reflects the enduring spirit of the Mizo people who, despite the trials of history and challenges of time, have preserved their rich pastry of folk tradition, dances to our oral narratives and intricate crafts. Mizo folk culture is a living expression of our resilience, creativity, and communal harmony.
Manaj Shah, president of IAA India, said the abundance of sculptures in Mizoram dating back to the 18th century and monumental villages in Champai district has a huge potential in the ecotourism sector. He said that IAA India will render its unstinting support for declaration of heritage sites in Mizoram as World Heritage Site by UNESCO, and renowned artist Sunil Devre and many more both from Mizoram and outside, joined the historic celebration.
विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स बाजार का लक्ष्य वैश्विक मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र में पेशेवरों, व्यवसायों और रचनाकारों को जोड़ने के लिए एक क्रांतिकारी ऑनलाइन बाजार बनाना है. अभिनेता आमिर खान ने एक अंग्रेजी दैनिक में अपने आलेख में कहा कि वेव्स बाजार मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए मुख्य व्यवसायिक केंद्र के रूप में काम करने का प्रयास करता है, जिससे पेशेवरों को अपनी पहुंच का विस्तार करने, नए अवसरों की खोज करने और बहुमूल्य साझेदारी में शामिल होने में मदद मिल सके. सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए आमिर खान ने कहा कि भारत वेव्स और वेव्स बाजार के माध्यम से वैश्विक मनोरंजन समुदाय के लिए अधिक सहयोगी और समावेशी भविष्य बनाने की दिशा में साहसिक कदम उठा रहा है. श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर. ISSF निशानेबाजी विश्व कप का दूसरा चरण आज से पेरू के लीमा में शुरू होगा. भारत का 42 सदस्य दल राइफल, पिस्टल और शॉटगन की स्पर्धाओं में भाग लेगा. इस विश्व कप के सभी स्वर्ण पदक विजेता दिसंबर में दोहा में होने वाले विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे. उधर IPL T20 क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे चंडीगढ़ में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा.
And now news from the business world. The benchmark domestic equity indices today surged over 2% amid positive global cues following temporary tariff relief on electronic goods by the US and hopes for additional tariff exemptions for the auto sector. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, surged 1,578 points to close at 76,735. The National Stock Exchange Nifty 50 rose 500 points to settle at 23,329. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.4%, down at $64.59 per barrel, and WTI crude was also trading 0.5%, down at $61.22 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 93,470 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading up at 95,340 rupees per kilogram when reports last came in.
श्रोताओं अब आपको लेकर चल रहे हैं आजादी के सफर पर.
In today's episode, we remember a captain of the Indian National Army, Ram Singh Thakuri, who died on the 15th of April 2002. He is also the composer of the INA anthem, Qaumi Tarana, which continues to instill the sense of patriotism among Indians through decades.
Kadam kadam badhaye ja, khushi ke geet gaaye ja, ye zindagi hai qaum ki, tu qaum pe lutaaye ja. Tu sher e hind hai aage badh, marne se phir bhi tu na dar, uda ke dushmanon ka sar, josh e watan badhaye ja.
Ram Singh was born near Dharamshala, Himachal Pradesh on 15th of August 1914. He was inspired by his maternal grandfather, Nathu Chand, to learn music. After joining the British Army in 1927, he got training from renowned British musician Hatson and Danish and brass band, string band and dance band.
During the Second World War, Ram Singh was posted to Singapore. After the defeat of the British forces in Singapore, he was taken in as a prisoner of war in 1942. Ram Singh joined the Indian National Army under the leadership of Subhash Chandra Bose.
When Bose came to know about Ram Singh's musical talent, he asked Ram Singh to compose tunes that would inspire the spirit of patriotism. Bose said to him,
"The song should have such an indelible impact and force that the Cathay building should break into two parts and the sky should become visible."
The army man and musician Ram Singh wrote lyrics and composed the famous song Kadam Kadam Badhaye Ja.
Teri himmat bati rahe, Khuda teri sunta rahe, jo samne tere ade, tu khaak mein milaye ja. Kadam kadam.
After the end of the war, Singh was brought back to India with his fellow soldiers and imprisoned at the Kabul lines of the Delhi cantonment. Mahatma Gandhi and Sardar Vallabhbhai Patel came to meet the INA soldiers. During the meeting, General Bhosle of the INA made a plea to Sardar Patel that the INA soldiers wanted to play the Qaumi Tarana. Bapuji sought permission from the English Army General, who readily gave it.
When Prime Minister Jawaharlal Nehru unfurled the national flag on the ramparts of the Red Fort and addressed the nation on 15th of August 1947, Captain Ram Singh was especially invited to play the tune of Qaumi Tarana of the INA along with the members of his orchestra group.
Captain Thakuri united all the Indians to the sound of his patriotic music. His spirit is still alive in our hearts through his songs of valor, which resonate across the country even today. We salute the great nationalist.
Aur और श्रोताओं, अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्म दिवस है।
Abraham Lincoln passed away on this day in 1865. He was the 16th president of the United States, serving from 1861 until his assassination in 1865. He led the United States through the American Civil War, defeating the Confederate States of America, playing a significant role in the abolition of slavery, expanding the federal government's power, and modernizing the U.S. economy.
आज हम निर्मला जैन जी को भी याद कर रहे हैं, जो हिंदी की प्रख्यात लेखिका और आलोचक थी। इनका आज तड़के ही निधन हो गया। ये 93 वर्ष की थी। दिल्ली शहर दर शहर संस्मरण और अपनी आत्मकथा जमाने में हम जैसी यादगार कृतियों के लिए इन्हें अपार ख्याति मिली। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा जा चुका है।
Marshal of the Indian Air Force Arjan Singh was born on this day in 1919. He was a senior air officer of the Indian Air Force. He was the third chief of the air staff from 1964 to 1969, leading the Air Force through the Indo-Pakistani War of 1965. He was the first and only officer of the Indian Air Force IAF to be promoted to 5-star rank as Marshal of the Indian Air Force, equal to the Army rank of Field Marshal.
आज सुल्तान खान जी की जयंती है। ये भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक थे। ये इंदौर घराने से ताल्लुक रखते थे। इन्हें देश में सारंगी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। पिया बसंती रे और अलबेला साजन आयोरे जैसे दिल को छू लेने वाले गीतों के उस्ताद सुल्तान खान को हिंदी संगीत जगत में एक विशेष सम्मानजनक दर्जा प्राप्त है। आइए सुनते हैं उनका गाया ये गीत। आइए अब आपको सुनाते हैं उस्ताद सुल्तान खान जी की एक सारंगी प्रस्तुति।
Yes, and Hasrat Jaipuri, born Iqbal Hussain, was born on this day in 1922. He was an Indian poet who wrote in Hindi and Urdu languages. He was also a renowned film lyricist in Hindi films, where he won the Filmfare Awards for Best Lyricist twice in 1966 and 1972. Jaipuri was born Iqbal Hussain in Jaipur, and he began writing verses when he was around 20 years old. Let's listen into a hit song from his film Sangam.
मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, के तुम।
Yes, and Christopher Elvin Stapleton was born on this day in 1978. He is an American country singer, songwriter, and guitarist. Born in Kentucky, Stapleton moved to Nashville in 1996 to study for an engineering degree at Vanderbilt University, but dropped out to pursue a career in music. Shortly after, he signed a contract with Seagale Music to write and publish his music. Let's listen into his hit track, Tennessee Whiskey, which is from the 2015 album, Traveler.
Liquor was the only love I'd known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone.
आज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत की भी जयंती है। इनका नाम खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने वाले कवियों में बड़े आदर से लिया जाता है। हरियौत ने ठेठ हिंदी का ठाट, अधकिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जैसे ग्रंथों की रचना की। इनका लिखा उपन्यास एक बहुत ही जिसे याद किया जाता है, रचनाओं में मील का पत्थर माना जाता है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।